श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम लय व्यवस्था की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और नई नई बातों को सीख रहे हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभप्रद है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने कोढ़ से शुद्ध होने की विधि के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि प्रतिदिन की समस्या घृणास्पद, दूषित, गुप्त पापों को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम अध्याय 15 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, पिछले दो अध्यायों में हमने कोढ़ के विषय में देखा था और काफी बुरा भी था, परंतु इस अध्याय में वह उससे भी भयंकर होने जा रहा है। इन दिनों में हम प्रदूषण के बारे में परिस्थिति विज्ञान के विचारों को सुन रहे हैं, परंतु हमारी आत्माओं में भी प्रदूषण है और हमारे मस्तिष्क और पूरे देह में है। ये घाव जो बह रहे हैं बहुत ही संक्रामक और रोग संचार करने वाले हैं और वे हमें पाप की अधिक पापमय को प्रकट करते हैं। मित्रों, मनुष्य का स्वभाव छलकने वाली हौदी है और अशुद्धता से भरा मल जल है, अर्थात गंदगी पानियों से भरा है। न केवल मनुष्य का स्वभाव दूषित व अपवित्र है, परंतु यह दूषित करता है। न केवल यह भ्रष्ट है, परंतु दूसरों को भी भ्रष्ट कर रहा है। यह अध्याय मनुष्य के स्वभाव के सामने आईने को थामता है और एक बार देखने के बाद कोई भी देह परमेश्वर की दृष्टि में महिमा नहीं पा सकता। मित्रों, कोई सोच सकता है कि कोढ़ एक बहुत भयानक बीमारी थी, परंतु यह निरंतर बहने वाले फोड़ों के समान उतना संक्रामक और संदूषित करने जैसे नहीं था। मैं डॉक्टर लेकर के बातों को रखना चाहता हूं जो कोढ़ के विशेषज्ञ हैं। कुष्ठ रोग छोटे या सूक्ष्म रोगाणु के द्वारा होता है, जिसे कुष्ठ दंडाणु कहते हैं, जिसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। कुष्ठ दंडाणु की खोज 1873 में नॉर्वे के डॉक्टर हानसेन ने की थी, इसलिए कभी कभी कुष्ठ रोग को हानसेन की बीमारी भी कहते हैं। रोगाणु शरीर के विभिन्न अंगों में एक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो कुछ निश्चित कुष्ठ रोगियों में ही होते हैं। ये इस कुष्ठ रोगी के चर्म से दूसरे लोगों तक पहुंच जाते हैं जो अच्छे हैं। विशेषकर यह शरीर को छूने से होता है, तब वे रोगाणु उस छोटे छिद्र या घाव में से होकर या खुजाने से अंदर प्रवेश करते हैं, जहां वे रहते और बढ़ते जाते हैं। मित्रों, सिर्फ संक्रामी मरीज जिनके चर्म में रोगाणु अधिक हैं, वे ही इस बीमारी को फैला सकते हैं। बहुत से मरीजों के चर्म में ये रोगाणु नहीं होते हैं और इसी कारण से वे इस बीमारी को फैला नहीं सकते। मित्रों, हमेशा स्नान करना, घर साफ रखना, कपड़े धोना आदि बातें इस बीमारी से बचाने में सहायता करती है, क्योंकि बहुत से रोगाणु साबुन के द्वारा घुलकर दूर हो जाते हैं इससे पहले कि वह आपके चमड़े अर्थात चर्म में प्रवेश करे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की है कि आप कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के स्पर्श से दूर रहें, क्योंकि रोगाणु हवा में या कीड़ों के द्वारा नहीं लाए जाते। ऐसा कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि इसके अलावा किस और तरीके से बीमारी दूसरों तक पहुंचती है, परंतु यह संभव है कि यह बीमारी किसी और कारणों से भी कभी कभी फैल जाती है जो शरीर को बिना स्पर्श किए भी होता है। हो सकता है कि आप उस बीमारी से पीड़ित मरीज का कपड़ा, चटाई या उसके और भी कुछ सामग्री का उपयोग कर रहे हो बिना कोई सावधानी बरते। जो कपड़े मिलते हैं वे गर्म पानी से और साबुन से धुलें और धूप में कम से कम 24 घंटा तक सुखाए हुए हो, तब मरीज के घर जाने और उससे हाथ मिलाने में भी कोई समस्या नहीं है, परंतु बाद में आपको अपने हाथ अच्छी तरह धोनी चाहिए। कुष्ठ रोग से डरने की कोई भी बात नहीं है। यदि इन साधारण बातों का ख्याल रखा जाए अर्थात पालन किया जाए, तो आप इससे बच सकते हैं। मित्रों, कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी थी जिसे आप इससे अधिक समय तक नहीं छिपा सकते थे। यह धीरे से काम करता है लेकिन अंत में बाहर आ ही जाता है। दिनचर्या की समस्या को जीवन भर गुप्त रखा जा सकता है। ये मनुष्य के जीवन के विचार और यहाँ तक कि उसके पाप को भी प्रत्यक्ष दर्शाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मित्रों, इसका संबंध मनुष्य स्वभाव के उस हिस्से से है जो दूषित हो चुका है और जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। हम अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। भजन संहिता 19 के 12 में लिखा है, अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। रोमियो के पत्र 7 उसके 18 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मित्रों, यहां पर मनुष्य का वह स्वभाव है जो छिपा हुआ है, कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता। यही बात हम अपने हृदय की गहराइयों में जानते हैं, फिर भी यह गुप्त पाप दूसरों को दिया जा सकता है। मनुष्य के गुप्त पापों के विषय में कुछ महान पुरुषों ने कहा है। गोयथ ने कहा, मैं देखता हूं कि कोई भी गलत नहीं हुआ है जिसे शायद मैं भी कुछ नहीं करता। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में जानता है जिसे वह अपने नजदीकी मित्रों को बताने का साहस नहीं करता। आगे काउंट डे मैस्ट्री का कहना है, मैं नहीं जानता कि एक दुष्ट का हृदय कैसा होगा, मैं केवल उस व्यक्ति के हृदय को जानता हूं जो भला व्यक्ति है और वह भयंकर डरावना है। शेक्सपियर ने कहा, आप अपने ही मन की गहराइयों में जाइए और खटखटाइए और अपने हृदय से पूछिए कि वह क्या जानता है। सुनेका ने कहा, ऐसा कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है जो अपने दुष्टता को स्वीकार करे, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक उन बुराइयों को नहीं छोड़ा है। यह केवल एक जागते हुए व्यक्ति की तरह है जो अपने सपनों को बता सकता है। मित्रों, पाप के श्राप ने मनुष्य के सामर्थ्य को उसके वंश के फैलाव में प्रभावित किया है। मनुष्य केवल अपने जैसी ही संतान उत्पन्न कर सकता है, एक पापी जैसा कि वह स्वयं है। सबसे प्रथम वंश ही दूषित हो गया था और बहुत सी निरंतर बहने वाले रोग जो अभी भी हैं, जो प्रजनन अंग के साथ जुड़े हैं, और बहुत से हिस्सों में वे सामाजिक बीमारियां हैं। लैंगिक पाप के साथ गंदापन और अशुद्धता जुड़ी है जो बहुत भयंकर है। भजन संहिता में दाऊद कहते हैं, भजन संहिता 51:7-10 पद में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मित्रों, आज लोग नए नैतिकता के बारे में बात करते हैं। यह एक रुचिदायक बात है कि वे उस पुराने रोग को नई नैतिकता के रूप देते हैं। आज सामाजिक रोग, रति रोग, यौवन रोग चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। यह बीमारी यहाँ हमारे देश में और अन्य देशों में भी है जहाँ हमारे सैनिक रह रहे हैं, ये फैल रही है। पाप का तरीका यही है जो व्यक्ति के अंदर उद्धार के आनंद को छीन लेता है। मित्रों, यह अनोखा लगता है कि परमेश्वर इस घृणित विषय के बारे में बहुत अधिक बात कर रहे हैं। जो भी हो, वह मनुष्य को अत्यंत पापमय पाप को समझने का एक विचार देता है। इस अध्याय में हम असाधारण विचारों को पाते हैं, इसलिए हमें पौलुस के शब्दों को सुन दोहराने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 4 पद में वह कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। मित्रों, आइए अब हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखें जो इस प्रकार है। प्रमेह से शुद्धिकरण की विधि। पहला, पुरुष में प्रमेह की अशुद्धता, अध्याय 15:1-18 पद। दूसरा, स्त्री में प्रमेह की अशुद्धता, अध्याय 15:19-30 पद। तीसरा, प्रमेह के घृणास्पद और उस पर नियंत्रण, अध्याय 15:31-33 पद। आइए अब हम देखें, पहला, पुरुष में प्रमेह की अशुद्धता। लेव व्यवस्था 15 अध्याय का 1 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा और हारून से यह भी कहा। परमेश्वर मूसा और हारून को संबोधित करते हैं। हम अध्याय 14 में एक कुष्ठ रोगी को परखने व कोल से शुद्धता की विधि के अंतर्गत रखा गया, जिसमें मूसा जो व्यवस्था या विधि का देने वाला था उसे भी संबोधित किया गया है। हारून महायाजक होने के नाते हमारे महान याजक की भविष्य सूचक तस्वीर है। मित्रों, केवल प्रभु यीशु मसीह पीड़ितों को समझकर उनको सांत्वना और समझ दे सकते हैं और उसके साथ साथ उन पर दया और अनुग्रह कर सकते हैं। हमारे महायाजक को हमारे पापों के द्वारा नहीं छुआ जा सकता, परंतु उसे हम हमारी कमजोरियों के साथ स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे ही तरफ परखा गया जबकि वह पाप रहित था। इब्रानियों के पत्री 4:14-15 2:17-18 में हम पाते हैं। लय व्यवस्था 15:2-3 में आगे हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि इसराइलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष में प्रमेह हो तो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे, और चाहे बहता रहे, चाहे बहना बंद भी हो, तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहे। मित्रों, यह तीक्ष्ण भाषा प्रकट करती है कि मानव का भ्रष्ट स्वभाव कितना घिनौना, बीभत्स, घृणित, अपमानजनक, अशुद्ध, विरोधी और पूर्ण रूप से दुष्चरित्र और भ्रष्टाचारी है। पाप का मवाद मनुष्य के हृदय से बह रहा है। हम इसे अपने चारों ओर और अपने अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रदूषण है। हमारे जीवन को प्रभावित किए बिना हम एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव न केवल भ्रष्ट है, परंतु यह भ्रष्ट करने वाला है। मैं और आप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं अपना जीवन अपने में जीता हूं और आप अपना जीवन मुझ में जीते हैं, अन्यथा यह नहीं चल सकता। आप जानते हैं या नहीं, आप एक प्रचारक हैं। आप अपने जीवन के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। एक बार एक भक्त महिला प्रभु के दास के पास आई, जिसका बेटा एक शराबी था। वे गिरजाघर की थोड़ी दूरी पर ही रहते थे। जब वह नशे में होता तो सड़क के दोनों किनारों का उपयोग कर तबाही मचाता था। उसकी माता दुखी और शर्मिंदा होती थी। उसने प्रभु के दास से कहा कि वह उसके बेटे से बात करे। एक दिन प्रभु के दास ने उसे सड़क पर घूमते हुए जाते देखा तो वह उसे अपने साथ ले गया और उसने उससे बात की। दास ने उससे कहा कि वह कितना नीचे गिर गया है, वह एक पापी और अनुग्रह रहित हो गया है। प्रभु के दास ने ऐसे शराबी के लिए जो कुछ कहना था वह कह दिया और उस बेटे ने सिर नीचे करके सब कुछ सुन लिया। तब प्रभु के दास ने उससे कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम अपने जीवन के द्वारा प्रचार कर रहे हो? उसने कहा, क्या आप मुझे प्रचारक कह रहे हैं? तब उसने कहा कि हाँ, आप एक प्रचारक हैं। यह सुनकर वह वहां से उठकर चला गया और जितना अधिक शराब वह पी सकता था पीकर प्रभु के दास से लड़ने के लिए आया। मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को आप संसार में कुछ भी नाम दे सकते हैं, परंतु वह एक प्रचारक ही है। मेरे मित्र, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप भी एक प्रचारक हैं। आप अपने जीवन के द्वारा कुछ संदेश का प्रचार कर रहे हैं। आप कुछ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मित्रों, मानव स्वभाव भ्रष्ट करने वाला है, क्योंकि वह पापी है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति भी अपने पुराने पाप भरे देह को थामे रहता है। अब यीशु के कहे वचनों को सुने। मत्ती रचित सुसमाचार 15:18-20 में यीशु ने कहा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, परिस्त्री गमन, व्यविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यह आश्चर्य की बात है कि कितने लोग हैं जो धार्मिक विधियों में रुचि रखते हैं। यद्यपि वे उन धार्मिक विधियों से होकर जाते हैं, परंतु फिर भी उनके पास एक ऐसा हृदय है जो इतना मैला और गंदा है जितना कि वह संभवतः हो सकता है। मित्रों, हम सबके पास उसी प्रकार का हृदय है, जब तक कि इसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ या शुद्ध नहीं किया जाता, वह वैसा ही रहेगा। याकूब इसे बहुत ही व्यवहारिक बनाते हैं। याकूब के पत्री 1:14-15 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पौलुस प्रेरित रोमियों के पत्र 7:18 में कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मित्रों, पाप का फोड़ा अर्थात घाव दिखे या ना भी दिखे, यह हो सकता है कि यह रिसने वाला लहू और मवाद हो, या हो सकता है कि यह सतह पर दिखाई ना दे, परंतु फिर भी वह वहां पर है। यहां पर अशुद्धता के विचारों में और गुप्त पाप में है। जो मनुष्य के सामने गुप्त है परंतु परमेश्वर के सम्मुख खुली है। भजन संहिता 51 उसके 6 पद में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यह पद एक घमंडी व्यक्ति को नम्र करने और परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण रूप से घृणित होने के बारे दिखाता है। भजन संहिता 51 उसके 4 पद में दाऊद की बात को सुने, लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मित्रों, परमेश्वर ने अपने वचन में बार बार जोर दिया है कि पाप अत्यधिक पापमय है। आप यजकेल नबी की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 से 13 पद को पढ़ें, जहां पर परमेश्वर इसराइलियों को स्पष्ट करते हैं कि उनके पास कोई भी सद्गुण या आकर्षण नहीं है, परंतु वे पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए घृणित हैं। वे प्रदूषित थे, उनकी वंशावली बुरी थी। या इसके अलावा आप यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय को पूरा पढ़ें, जहां पर वह कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने ही तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है जिससे वह भी नहीं सुनता। यशायाह 59 उसका 2 पद में इसे हम पाते हैं। तब हम लयव्यवस्था की पुस्तक 15 अध्याय उसके 4 से 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे और जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्र को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। मित्रों, प्रत्येक चीज जिस पर वह बैठता है और जिसे वह छूता है अशुद्ध ठहरे। परमेश्वर अपने लोगों के व्यक्तिगत जीवन के प्रति चिंता करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था उनके जीवन की हर एक छोटी से छोटी बात तक पहुंचती है। जब वो सोते हैं तब भी वो उनके ऊपर नजर रखता है। जिस व्यक्ति में प्रमेह की समस्या है और वह बिस्तर पर सोता है तो वह उसे दूषित करता और यहां तक कि उसके सपने भी अशुद्ध होते हैं। बहुत से लोग बिना सोए रात बिताते हैं, वे तारों को गिनते हैं, परंतु वे अपने उन पापों को जो शारीरिक वासना संतुष्टि के लिए होते हैं उन्हें स्मरण करते हैं। परमेश्वर इस बात में रुचि रखते हैं कि जब हम तकिए पर लेट जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं। वह हमारे जीवन के विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मित्रों, परमेश्वर आप में रुचि रखते हैं। जब आप लेटते और चलते फिरते हैं तो वह आप में रुचि रखते हैं। आप जिसे छूते हैं उसमें रुचि रखते हैं। जब हम कुर्सी पर बैठकर सामाजिक बातचीत करते हैं तो परमेश्वर उस बातचीत में रुचि रखते हैं। क्या हम दूषित कीटाणु को फैलाते हैं? परमेश्वर हमारे कार्यों और समाज के साथ संपर्क स्थापित करने में भी रुचि रखते हैं। एक स्वच्छ व्यक्ति के साथ अस्वच्छ व्यक्ति का स्पर्श हमेशा स्वच्छ व्यक्ति पर बीमारी को लाता और फैलाता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम दूषित हुए बगैर लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं या बिना दूषित हुए सड़क पर नहीं चल सकते हैं। हम 4 अक्षरों वाला शब्द सुनते हैं, हम टेलीविजन देखते हैं और हम उसके प्रचार और विज्ञापन के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। हम निरंतर दूषित किए जाते हैं। हमें इसे सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने पापों को स्वीकार करने और परमेश्वर के द्वारा शुद्ध होने की आवश्यकता है। हम सबके अंदर यह पाप का कोड है, ये बहने वाले घाव हैं, ये छिपे पाप हैं। लयव्यवस्था की पुस्तक 15 अध्याय उसके 8 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे और जिसके प्रमेह हो वह सवारी के लिए वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्र को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। मित्रों, यह उस हद तक चला जाता है जहां पर एक व्यक्ति घृणा महसूस करता है, परंतु यह स्पर्श के द्वारा पाप की गंदगी को प्रकट करता है। पुराने नियम घर के आचरण व व्यवहार से संबंधित थे और अब यह आचरण सड़क पर या सामाजिक स्थानों से संबंध रखते हैं। इनमें से कुछ को हम आकस्मिक स्पर्श कह सकते हैं। मित्रों, आज इसे हम पाते हैं कि एक विश्वासी अक्सर अपने आप को एक सामाजिक स्थान पर या कुछ भ्रष्ट लोगों के बीच और सड़क पर पाता है। दुष्टता से भरा व्यक्ति अपना मुंह खोलता है और विशुद्ध गालियां बाहर निकालता या उगलता है और अकथनीय अर्थात न कहने वाली परमेश्वर की निंदा करता है। यह दूषित कर रहा है और इस प्रकार के समूह को छोड़ने के बाद एक विश्वासी को खराब महसूस हो सकता है और वह गंदा है। उसे स्वयं को धोने या साफ करने की आवश्यकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन में बने रहें। भजन संहिता 119 उसके 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मित्रों, इस जीवन में हम गंदे हो जाते हैं। अब हम यीशु के इन कथनों को सुने। यूहन्ना 13:8 में लिखा है, यदि मैं तुझे न धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं कर सकते हैं यदि हम उसके द्वारा नहीं धोए गए अर्थात शुद्ध किए गए। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और आगे हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक 15 उसके 13-15 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके प्रमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। मित्रों, यहाँ पर फिर से पानी और लहू दोनों का परिचय हमें मिलता है। लहू पाप के अपराध को दूर करता है और पानी पाप के धब्बे को दूर करता है। पवित्र आत्मा को हमारे उन गुप्त पापों के लिए जो हमारे जीवन में है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को लागू करना चाहिए। मित्रों, क्या आप देख रहे हैं कि यह क्या वर्णन कर रहा है? यह एक घिनौना अध्याय है और फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह तस्वीर आपकी और मेरी है। हमें स्वीकार करने और हमारे गुप्त पापों से शुद्ध होने की आवश्यकता है। हम भजन संहिता 32:5 में पढ़ते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, यदि हम यीशु के सम्मुख पापों को मान लें तो वह हमें शुद्ध करके उद्धार का आनंद देंगे। लेकिन क्या आप आज तैयार हैं? आज ही आप निर्णय लें और जीवन में आशीष को प्राप्त करें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त हुआ है। आप इसके बारे दूसरों को भी बताएं ताकि वे भी अपने जीवन को पवित्र बना सकें। प्रभु आप सबों की सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था, जब मैं गुनाहों में पड़ा तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था, पर सहारा बना अपने पास मुझे बुलाया, इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह, तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह, तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया, मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम।